देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। पहले भी पालना दी आपने कमाल की, अव्यक्त होके सेवा और भी विशाल की। आपकी याद बाबा। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए,
आपकी याद बाबा रह रह के आए। देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
देखा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच में भट्टी का क्लास कराने के लिए आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता दीदी उपस्थित हैं। डॉक्टर सविता दीदी को मैं बचपन से ही जानती हूँ।
सो क्यों जानती हूँ? और ये मेरा परम सौभाग्य है कि बचपन से ही मुझे आपके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। और आपके साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा। समझ ही गए होंगे ना, राज की बात तो समझ गए होंगे ना, क्या गहरा राज। हाँ, हम दोनों बहने हैं, आप बड़ी दीदी हैं और मैं छोटी बहन। आप बाल्यकाल से ही बहुत मेधावी थे, इस कारण पढ़ाई में सदा अव्वल नंबर वन रहे। बचपन से ही आपने डॉक्टर बनने का सपना अपने बाल मन में संजोया था और उसे आपने अपनी युवावस्था में अपनी सच्ची लगन और अथक परिश्रम से साकार कर दिखाया। सन 1974 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए। ब्रह्मा कुमारीज में दिए जाने वाले ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को आपने गहराई से समझकर अपने जीवन में आत्मसात किया और मुझे भी पकड़ के यहाँ लाया। मुझे भी छोड़ा नहीं, मुझे भी अपने साथ यहाँ लाया। राजयोग के नियमित अभ्यास से आपको जो सुखद अनुभूतियाँ हुई उनसे प्रेरित होकर सन 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। आप स्वभाव से सरल, मृदुभाषी और हर्षित मुख हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के वुमेन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं तथा ब्रह्मा कुमारीज के मानसरोवर परिसर की निर्देशिका हैं। आपने भारत सहित विदेश के अनेक देशों की यात्रा कर अनेक आत्माओं को परमात्मा संदेश दिया है। वर्ष 2023 में यूएसए की ग्लोबल विमेन एम्पावरमेंट संस्था द्वारा वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। आपके लिए अपने भाव पुष्प अर्पित करना चाह रही हूँ। आप ममता की मधुर छाया सेवा का सुंदर सार हैं। आप ममता की मधुर छाया सेवा का सुंदर सार हैं। सविता दीदी, सचमुच आप ईश्वरीय प्रेम का उपहार हैं। आपकी मुस्कान में जैसे शांति का झरना बहता है, आपकी मुस्कान में जैसे शांति का झरना बहता है, आपके एक एक शब्द से हर आत्मा को नव जीवन मिलता है। आपके एक एक शब्द से हर आत्मा को नव जीवन मिलता है। आदरणीय सविता दीदी जी।
विषय विषय विषय
आज की भट्टी का विषय है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति।
ओम शांति, ओम शांति। तो शकुंतला बहन ने सुनाया कि लौकिक में भी हम ना लौकिक अलौकिक बहने हैं और अब तो अलौकिक संबंध ही ज्यादा है। तो आप सभी यहाँ पांडव भवन भट्टी में पहुंचे हैं। पद्मा पदम भाग्यवान है, मैं समझती हूँ कई तो पहली बार आए होंगे। जो पहली बार पांडव भवन में रुके हैं आकर वो हाथ उठाएं। मेजॉरिटी पहली बार चांस लेने वाले हैं, क्योंकि अब तो वो अवसर ही नहीं होता है कि हम पांडव भवन में रहें, क्योंकि सब प्रोग्राम सब शांतिवन में शिफ्ट हो गए। तो इस भूमि की विशेषता है कि यहाँ हमें योग लगाना नहीं पड़ता, लगाना पड़ता है, योग अपने आप लगा ही रहता है बाबा से, क्योंकि ये बाबा मम्मा की तपस्या भूमि है, हमारी दादियों की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, तो इसके वाइब्रेशंस और पावर इतनी अच्छी है। तो जो विषय है आज का, ये बाबा के अंतिम शब्द थे। जब बाबा ने विदाई ली बच्चों से, तो बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तो बाबा ने स्वयं वो पुरुषार्थ किया, और हमें भी बाप समान बनना है तो हमारी भी स्थिति कौन सी होनी चाहिए? बाप समान निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। तो निराकारी स्थिति माना आत्मिक स्थिति, कितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, विदेही स्थिति में रहते हैं, यानी शरीर में होते हुए शरीर से न्यारेपन का अनुभव करना। तो हम कोशिश तो करते ही हैं, जैसे ही आत्मा का पाठ पढ़ते हैं उस समय से हमारा ये पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, मैं आत्मा हूँ, और केवल मैं आत्मा नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये भी बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। कितनी लंबी हमारी लिस्ट है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो हम योग में बैठते हैं, या हम जब क्लास कर ये मुरली सुनते हैं, तो हमारा ये पुरुषार्थ होता है। लेकिन सारे दिन जब हम कर्म व्यवहार में आते हैं, उसमें हम कर्म कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, सोल कॉन्शियस की बजाय हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। और कर्म कॉन्शियस होते होते कब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि देह भान की नेचर नेचुरल चली आ रही है। 63 जन्मों के पक्के संस्कार है ना देह भान के, तो उसकी निशानी फिर क्या होती है? हम देह भान में आ गए, उसकी निशानी क्या होगी, क्या होगी? हाँ, पुराने संस्कार काम करने लग जाते हैं, फिर बात बात में गुस्सा आ जाएगा, चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी तो सुनी थी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि देह भान विकारों की जड़ है, सारे विकार इमर्ज कर देता है देह अभिमान, और हम पूरा विस्मृति में रहते हैं। जब तक फिर योग में नहीं बैठते तब तक हम देह भान में ही हैं जैसे। इसीलिए बाबा हमें कहता है हर घंटे में या बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास अटेंशन देकर करो। अभी कुछ संडे पहले बाबा की मुरली थी, बाबा ने कितनी बार कहा आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास कितनी बार करो, याद आया? और कितना ही मिनट करो, मिनिमम 5 मिनट। वैसे बाबा ने कितने मिनट बोला? 10 मिनट। बाबा ने कहा अच्छा चलो 10 मिनट ज्यादा लगता है, 10 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट ज्यादा लगता है तो 5, 6 करो, 7 करो, बढ़ाओ, कम नहीं करो, और 5 से तो बिल्कुल भी कम नहीं करो। तो बाबा को पता है ना, और इसीलिए फिर बाबा ने कहा कि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसीलिए अभी से अभ्यास करो। तो आत्मिक स्मृति जो हमारी है वो इतनी पावरफुल स्मृति है। तो बाबा भी हमें हर रोज मुरली, कोई साकार मुरली नहीं होती जिसमें बाबा ये नहीं कहता देही अभिमानी बनो। है कोई मुरली जिसमें बाबा ने नहीं, क्यों बार बार याद दिलाते हैं, फिर भी हम बार बार ही भूलते हैं। पहला पाठ अंतिम पाठ है, वो पहला पाठ ही याद नहीं होता हमको, लास्ट तक भी वही पाठ में हम लगे रहते हैं, है कि नहीं? या सब किसको लगता है कि मेरी नेचुरल आत्मिक स्थिति रहती है, और हम किसके भी संपर्क में आते हैं तो आत्मा ही देखकर बात करते हैं, आत्मा ही देखते हैं, नहीं है ना? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, इसका मतलब अभी तक भी पहला पाठ तो हमें पक्का हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो अगर मेरी आत्मिक स्मृति है तो क्या क्या हम समर्थि अनुभव करते हैं? सबसे पहले तो रूहानियत, जिसकी जितनी आत्मिक स्थिति है उतना उसके चेहरे पर रूहानियत दिखाई देती है। सभी बाबा के बच्चों के चेहरे पर रूहानियत होती है, क्योंकि देही अभिमानी तो हम बनने लगते ना, लेकिन नंबरवार, तो जिसकी जितनी है उतनी रूहानियत उसके चेहरे पर नजर आएगी और प्यूरिटी नजर आएगी, क्योंकि आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि पवित्र दृष्टि वृत्ति है। आत्मा की स्थिति ही हमें विकारों से मुक्त करती है, तो आत्मा पवित्र है तो वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस भी अनुभव होते हैं उनसे, तो वो किसी के भी संबंध संपर्क में आएंगे तो वो भी फील करेंगे कि इनकी दृष्टि वृत्ति हमसे अलग है। देहभान की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि में फर्क होता है, नहीं होता है? होता है नहीं होता? दुनिया वालों की दैहिक दृष्टि होती है तो हमें पता चलता है नहीं चलता? चल जाते हैं ना। इसलिए कई ब्राह्मण शिकायत भी करते हैं कि हमको तो उस नेगेटिव वातावरण में जाना पड़ता है, वहीं काम करना है, लोगों से व्यवहार में आना है, तो उनका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो क्या पढ़ना चाहिए? क्या कहेंगे, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? किसका पढ़ना चाहिए? हमारी आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हो कि हमारी दृष्टि का प्रभाव उन पर पड़े। बाबा कहते हैं आप पतितों को पावन बनाने वाले हो, तो आपकी वृत्ति से वो आत्मा भी पवित्रता का अनुभव करे, उसकी वृत्ति भी बदल जाए, इतनी पावर होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो कि वो विश्व परिवर्तक हैं। कौन विश्व परिवर्तक है? नहीं तो वो परिवर्तक हो गए ना, उसने हमारा परिवर्तन कर दिया, हम उसके प्रभाव में आ गए, हमारी स्थिति हलचल में आ गई उस आत्मा की वजह से। तो इसका मतलब हम देह भान में आएंगे तो देहिक आकर्षण यानी अन्य आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें इफेक्ट करेंगे। हम हाँ अपने जीवन में भी अनुभवी हैं इस बात के कि जब कभी पहली बार, मतलब मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हम विदेश गए, अमेरिका जाना हुआ, तो वहाँ पर जहाँ सेंटर पर हम थे, वो बहन को वहाँ के मेयर का निमंत्रण मिला, क्योंकि मेयर के साथ उनके संबंध संपर्क थे, वो उनके प्रोग्राम में बुलाते थे उनको, ऐसे होता ही है, मैंने शहर के जो भी वीआईपी होते हैं उनसे संपर्क रखते हैं, तो उनको निमंत्रण था, उनका जन्मदिन था, तो मैं थी वहां पर, तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलो, आप आए हैं मधुबन से तो सेवा होगी, लेकिन ये अमेरिका है तो भारत जैसा तो नहीं होता है, यहाँ पर तो माहौल अलग होगा, हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, है ना। बोला हम तो यूज्ड टू हैं, लेकिन यहाँ की जो पार्टीज होती हैं वो विदेश की हम समझ सकते हैं, लोग क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे मिलते हैं, और उनका ड्रिंक करना तो बहुत कॉमन होता है। बोला लेकिन क्योंकि सारे, क्योंकि वो मेयर हैं तो सारे शहर के बड़े लोग इकट्ठे होंगे तो हम सेवा कर सकेंगे, तो इसीलिए। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, वो कोई बात नहीं। तो फिर हम गए वहाँ पर, तो मैं तो वाइट साड़ी में ही थी, उसने साड़ी के ऊपर थोड़ा एक रंगीन जैकेट टाइप पहन लिया, और फिर हम वहाँ पर मिले उनसे, मेयर से मिले, और सारा उनका प्रोग्राम वैसे ही था जो उन्होंने बताया, ड्रिंक करना, और उनका मिलना तो हमारे इंडियन जैसा मिलना नहीं होता है, फिर केवल हाथ भी नहीं मिलाते वो, तो पूरा अच्छे से गले लग के, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, वो डिफरेंस ही नहीं होता, मना रियल देही अभिमानी कहेंगे, कि उनको वो अंतर ही नहीं पता है या वो कॉन्शियस ही नहीं है उनको, इस तरह से वो सारा मिलना, और खान पान भी बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन सब, और जो भी उनका चला प्रोग्राम, तो हम बहन ने सबसे जिनसे भी मिलवाया, मिले हम, लेकिन नेचुरली हम तो इन सब चीज़ों से बहुत न्यारे हैं, तो हमने उनका ना भी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ केक कटिंग तक रुके, और फिर जब वो पूरा हुआ फिर हम उनसे, उनके जो भी रिश्तेदार थे उनसे मिल कर के और हम निकलने लगे, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज की इस पार्टी में आप दोनों बिल्कुल एंजल लग रहे थे। हाँ, तो क्यों एंजल लग रहे थे? क्योंकि हमारी दृष्टिवृत्ति उनकी दृष्टिवृत्ति जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो उनकी भाषा तो एंजल की है ना, क्योंकि वो एंजल जानते हैं, विदेशों में तो एंजल को मानते हैं, तो वो उनको वो फीलिंग आ रही थी हमसे कि ये जैसे हमारी पार्टी में एंजल आए हुए हैं। तो हम अपने वाइब्रेशन से उनको अनुभव करा सकते हैं, यानी उनका वातावरण हम बदल सकते हैं अगर हमारी वृत्ति पावरफुल है तो। और बाबा हमसे यही कहते हैं, बाबा कहते हैं आप प्रकृति को पावन बनाने वाले हो, तो आत्माओं को वो वाइब्रेशन का अनुभव नहीं करा सकते? करा सकते, नहीं करा सकते। फिर अगर हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो हमारा योग पावरफुल होगा। जितना हमारा ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा उतना हमारे योग, जिसको बाबा कहता है योग अग्नि या ज्वालामुखी योग की स्थिति का हम अनुभव सहज कर सकेंगे। नहीं तो हमारा योग साधारण योग ही रहता है। नॉर्मली जब हम भट्टी में आते हैं तब थोड़ा सा हमें अवसर मिलता है कि हम इतना पावरफुल योग करें, नहीं तो नॉर्मली हम कैसे योग करते हैं? योग में बैठे, क्योंकि देह भान की स्थिति होती है तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बैठते ही योग नहीं लगता, इधर की बातें उधर की बातें, फिर थोड़ा बहुत बाबा से रू रिहान करना शुरू करेंगे, फिर क्या शुरू हो जाएंगी समस्याएं, क्योंकि सारे दिन कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब वो किससे बोलेंगे? तो बाबा से ही बोलना शुरू करते हैं, है ना। फिर किसी की शिकायत करना, कुछ बाबा से हल मांगना, वो सब चलता है और इतने में योग का टाइम पूरा हो जाता है। ये कौन सा योग है? कौन सा योग है? क्या करते हैं? हाँ, पावरफुल योग करते हैं, ये वाला योग करते हैं। मैच्योरिटी कौन सा योग करते हैं? यहाँ भट्टी में करेंगे थोड़ा पावरफुल, नहीं तो ऐसे योग करते हैं। और ऐसा योग करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते और हमारे संस्कार परिवर्तन भी नहीं होते। तो हम ज्ञान में चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वही संस्कार हैं। फिर सोचते हैं क्यों नहीं चेंज होते, क्यों नहीं चेंज होते? बाबा कहते हैं भस्म ही नहीं किया ना उसको, योग अग्नि में भस्म करना पड़ता है, वही वही संस्कार थोड़े दब जाते हैं, ज्ञान योग से थोड़े दब जाते हैं, बाद में फिर से जैसे ही कोई परिस्थिति आएगी वो इमर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए हम आत्मिक स्थिति में आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, यही राजयोग की विधि है। और अशरीरी होते ही हम न्यारे हो गए, तो संसार से न्यारा होना सहज है। परम धाम में निराकार रूप में शिव बाबा को याद करना, अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होना, वो भी सहज है। पावरफुल योग का मतलब जो स्थिति हम जितना समय बनाना चाहें वो बना सकते हैं, यानी कंट्रोलिंग पावर होती है हमारे अंदर। तो अगर बीज रूप स्थिति में परम धाम में मन को स्थित करना है, 10 मिनट, आधा घंटा, मन उस शुद्ध संकल्प में टिक जाए परम धाम में। अब भट्टी कर रहे हो ना आप, तो वो भट्टी में आप ये प्रयास करो कि आधा घंटा पूरा टाइम मेरा मन परम धाम में रहे। ऐसे नहीं पहुंचे परम धाम, फिर 1 मिनट में कोई बात याद आई और कहाँ पहुंच गए? नीचे। फिर कोई बात कोशिश करके पहुंचे ऊपर, फिर कोई बात याद आई, फिर कहाँ आ गए? नीचे। तो ये पावरफुल योग नहीं है, इसको बाबा कहते हैं युद्ध की स्थिति, स्थित होने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं रहे। तो युद्ध में नहीं, किस में रहना है? योग में। तो वो निरंतर उस स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए सहज तब होता है जब हमारा अभ्यास है अशरीरी का, देही अभिमानी स्थिति का, और जितना हम उसे निरंतर बनाएंगे, जैसे कहा ना बीच बीच में वो अभ्यास, हमारे यहाँ क्यों ट्रैफिक कंट्रोल बचता है हर घंटे, शांति की शक्ति वाला एक मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना मधुबन में, ये तभी शुरू किया था, बड़ी दादी जी ने शुरू करवाया था जब बाबा ने ये बात कही थी। बाबा ने जब कहा था कि हर घंटे में कुछ मिनट अशरीरी स्थिति का अनुभव करो तो वो आपका निरंतर होगा, तो फिर वो हमारा 5 टाइम मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी दादी ने फिर ये 1 मिनट कि हम उस 1 मिनट में अशरीरी हो जाएं, 1 मिनट तो हो सकते हैं, चलो ज्यादा लंबा समय नहीं तो, तो वो भी हमें वो स्मृति में ले आएगा। और फिर जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं उतना ही हमारे कर्म भोग को हम कर्म योग से सहज सूली से कांटा अनुभव करते हैं। मुरली में बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का काम करती है, जैसे इंजेक्शन लगाने से दर्द ठीक हो जाता है ना, कोई भी प्रकार का कष्ट है बीमारी का वो इंजेक्शंस होते हैं ना, वो देते हैं तो कितना टाइम लगता है ठीक होने में, गोली लेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन इंजेक्शन लगाने से तो मिनट्स में वो दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही देह से न्यारे हुए और कर्म इंद्रियां शांत होती हैं। तो बड़े से बड़े हिसाब किताब, इसीलिए बाबा कहता है आत्मा स्वस्थ है तो शरीर का हिसाब किताब उसका कष्ट हमें अनुभव नहीं होता, मन बीमार नहीं होना चाहिए, है ना। आत्मा स्वस्थ माना मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है बाबा से अगर हमारा कनेक्शन है तो वो रूहानियत की शक्ति यानी जो बाबा की दुआएं हैं जिसको बाबा कर्म योग कहते हैं, वो बाबा की दुआएं हमें मदद करती हैं। और इसीलिए बाबा दवा और दुआ कहते हैं कि दवा नहीं लेना है ऐसे मना नहीं करते, कोई भी कर्म भोग आया है पता ही है अभी 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, चुप तो करने ही हैं, किसी ना किसी रूप में आएंगे ही सामने, चाहे वो तन की बीमारी है, चाहे वो मन की परेशानी है, चाहे वो धन की खींचातान है कोई, चाहे संबंधों में टकराव है, आते हैं ना किसी ना किसी रूप में, तो जो भी रूप में वो सामने आएंगे हमारे हिसाब किताब हम उन्हें सहज पार कर पाएंगे। वही बाबा कहता है परिस्थितियां नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो आत्मा में वो पावर रहेगी, क्योंकि जब हम वो आत्मिक स्थिति माना जैसे कहा मैं कौन सी आत्मा हूँ उस सीट पर हम स्थित हैं, बाबा ने उस दिन सोमान की मुरली में कहा ना जो सीट पर सेट होता है सब उसका ऑर्डर मानते हैं, अगर सीट पर सेट नहीं है तो कर्मेंद्रियां हमारी शक्तियां माया ये सब कब ऑर्डर में रहेंगे, जब हम अपनी आत्मा की सीट पर, आत्मा मालिक अपनी सीट पर है, तो इसीलिए ये सहज अनुभव होता है। और हमने जो भी बाबा को देखा, मामा को देखा, दादियों को देखा ना, हम सब जानते हैं कि ऐसे नहीं इनके सामने हिसाब किताब नहीं आए, जितने महारथी उतने बड़े बड़े हिसाब किताब, लेकिन कितना सहज उन्होंने उन हिसाब किताब को जैसे कहा सूली से कांटा अनुभव किया, उसका वो कष्ट उनको कभी भी महसूस नहीं हुआ, उस दुख से वो न्यारे रहे। कर्मेंद्रियां हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग हूं, तो साक्षी होकर के जैसे हिसाब किताब चुकतू करना। फिर हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, बाबा ने कितना अभ्यास किया अशरीरी स्थिति का, सुनते हैं ना लास्ट में जब बाबा की कर्मातीत अवस्था होनी थी वो 2-3 साल दादियां कहते थे हम बाबा से मिलते थे और बाबा दृष्टि देता था और हम भी अशरीरी हो जाते थे, और हम सोचते थे बाबा को ये बोलेंगे ये समाचार सुनाना है, ये बाबा से पूछना है, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी, बाबा की दृष्टि से ही ऐसा अनुभव हो जाता था कि ये बातें क्या पूछनी है बाबा से, ये क्या कहना है बाबा को, माना बाबा जैसे वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा देते थे, भरपूर कर देते थे। और अगर सुनते भी थे तो बीच बीच में जैसे लगता था कि बाबा है ही नहीं यहाँ पर। तो जैसे बाबा ने अभ्यास किया, बाबा कहते हैं ये अंतिम समय का पुरुषार्थ है, तो हमारा भी है ना, बहुत काल से चाहिए, लेकिन अंतिम समय में वो स्थिति होगी जो कहा नजर से निहाल करना। तो बाबा अपनी दृष्टि से निहाल करते थे, माना वो बाबा की स्थिति बाबा ने बनाई। दादियों का भी हम देखते हैं, लास्ट में कितना समय दादियों से मिलने को मिलता था, कौन कौन मिले हैं दादियों से, कई तो और भी पीछे आए होंगे, दादियों से ही नहीं मिले होंगे, लेकिन आप में से कौन कौन मिले हैं दादियों से, हाथ उठाओ, अच्छा हैं काफी। हाँ, तो लास्ट में दादियों से कितना समय मुलाकात होती थी, हाँ एक मिनट की दृष्टि मिल जाती थी तो भी कैसा अनुभव, कैसा अनुभव होता था, हाँ तो भरपूर हो जाते थे ना कि हाँ दादी से मिले, दादी की दृष्टि मिली, बस वो शक्ति आ जाती थी, वो खुशी आ जाती थी आत्मा के अंदर। तो वो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ हमारा अभी से चाहिए, जो बाबा ने किया, जो हमारी दादियों ने किया। और अमृत वेले हम इस स्थिति का अभ्यास सहज कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले जब हम सोकर उठते हैं वैसे ही आत्मा देह से न्यारी स्थिति के अनुभव में होती है। सोना माना क्या, डिटैच होना ना, सोना माने हम सब तरफ से डिटैच हो जाते हैं। तो जैसे ही हम सोकर उठते हैं, अगर हम सचमुच पावरफुल अमृत वेला कर रहे हैं, निद्रा योग नहीं, उठकर बैठे और वही नींद के नशे में चुटके मार मार के अमृत वेला पूरा हो गया, बहुत शांति मिली, वो तो मिलेगी ही क्योंकि नींद में भी तो शांति होती है, वो उसकी बात नहीं। लेकिन जब हम अपने जैसे जो हमारा स्वस्वरूप है वो स्वरूप में स्थित होकर, जो बीज रूप स्थिति है हमारी परम धाम में, तो वो शांति की स्थिति में परम धाम में मन को हम अगर अमृत वेले पावरफुल रूप में स्थित करते हैं तो सारा दिन हमें उसका सहयोग मिलता है। और आत्मा के गुण है ना, अनादि स्वरूप में मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में कैसी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। तो अगर पवित्रता की झलक फलक दिखाई देगी तो ये गुणों की दिखाई नहीं देगी। अगर मैंने अभ्यास किया तो फिर सारा दिन कौन से गुण अनुभव होंगे, वही शांति, वही सुख, वही प्रेम। हम किसी के भी संपर्क में आएंगे, अगर मेरी शांत स्वरूप की स्थिति है तो सामने वाले को क्या अनुभव होगा, होगा या नहीं होगा ना। लोग सामने से भी कहते हैं आप इतने शांत कैसे रहते हैं, हमको भी बोलते हैं कई ना, तो कैसे रहते हैं शांत, हमारी शांत स्वरूप की स्थिति है तो वही शांति का अनुभव होगा। ऐसे ही सुख स्वरूप की स्थिति है तो कोई भी हमसे बात करेगा उसका लगेगा कि उसका दुख हल्का हो गया, तो वो कहते भी हैं आपसे बात करके तो हमारा मन दुखी, हम दुखी थे लेकिन जैसे कि हमको सुख मिल गया, खुशी मिल गई, हमारे अंदर वो उमंग उत्साह आ गया। तो क्योंकि हमारे वो आत्मिक गुण इमर्ज, आत्मिक स्मृति है तो आत्मिक गुण इमर्ज होंगे, दैहिक स्मृति है तो विकार इमर्ज होंगे। तो वो अनुभव होता है आत्माओं को तब जब हमारी वो आत्मिक स्मृति है, वो आत्मिक गुण भी हम अनुभव कराते हैं अपने चलन के द्वारा। इसको ही बाबा कहता है, उस दिन भी मुरली में बाबा ने कहा ना, संडे की मुरली में, कि केवल वो हम वाचा कर्मणा सेवा कर रहे हैं वही सेवा नहीं, लेकिन अपने संबंध संपर्क व्यवहार में भी किसी भी आत्मा को हम सहयोग दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तो वो भी पुण्य है, गिरे हुए को उठाना। याद आया संडे की मुरली बाबा ने कहा था, है ना, तो ये हम कर रहे हैं तो भी हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं, वो सेवा का कार्य कर रहे हैं। फिर निराकारी स्थिति हमें निर्विकारी बनाती है, क्योंकि कहा ना आत्माभिमान उन्नति की सीढ़ी है। तो हम सहज निर्विकारी बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो तो देह अभिमान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो विकारों के मोटे रूप हैं, हम ज्ञान में आते हैं, हम जीत लेते हैं इनको। ऐसा नहीं है कि विकारों का जो वो रूप होता है जो दुनिया में लोग विकारों के वश होते हैं, इस तरह से फिर हम वश नहीं होते। लेकिन जो विकारों के सूक्ष्म रूप हैं, उनके जो अंश वंश हैं, उनको कई बार हम समझ भी नहीं पाते, परख भी नहीं पाते, और या फिर अलबेले होते हैं। इतना तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है, कौन बना है, अभी हम संपूर्ण थोड़ी बने हैं, है ना। तो इस तरह से हम उनको चलाते रहते हैं। अब जैसे काम विकार है, काम विकार में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए जो सन्यासी जो हैं, जिसे असंभव समझते हैं, वो हमने संभव कर लिया। तो है ना कि हमने इतना मुश्किल काम को आसान कर लिया बाबा के ज्ञान और योग की शक्ति से। लेकिन इसका सूक्ष्म रूप कैसे प्रकट होता है? अब बाबा कहते हैं, सर्व संबंध हमारे एक बाबा से हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन कोई अच्छा लगता है, अब ऐसे तो है नहीं, मनुष्य भी तो अच्छे लगते हैं ना। किसी में गुण अच्छे हैं, किसी में कलाएं अच्छी हैं, किसकी पर्सनालिटी अच्छी है, और ब्राह्मण परिवार में किसी की पालना देना अच्छा लगता है, उनका सेवा का तरीका अच्छा लगता है, प्रभावित होते हैं पहले, अच्छा लगता है। माना अच्छे हैं तो सब अच्छे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब ज्यादा अच्छे क्यों लगेंगे? कोई तो विशेष बात होगी तभी अच्छे लगेंगे। उनसे या तो हमारे विचार मिलते हैं, या वो हमें समझते हैं। जैसे हमने कोई बात कही, बहुत अपनापन मिलता है उनसे हमें, जिसको हम पालना कहते हैं ना, स्नेह मिलता है, पालना मिलती है। तो हम अपने दिल की बात, अब जो अच्छा लगेगा उससे क्या करेंगे? फिर मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या होता है, जिनसे भी हम एक्स्ट्रा में जाते हैं, बाबा ने तो मुरली में कहा था एक संडे पहले की मुरली में, कि किसी से हमने भाई बहन का नाता भी जोड़ लिया, अगर याद आया तो, भाई बहन का नाता जोड़ा या सखा सखी का नाता भी जोड़ लिया, तो उतना संबंध बाबा से क्या हुआ? उतना कम हो गया। तो दूसरी बात तो छोड़ो, है ना, वो जो दूसरे लगाव झुकाव होते हैं मेल फीमेल वाले, वो तो विकर्म ही हो गया, वो तो छोड़ो। उसको बाबा, उसके बाद भी बाबा कहता है, अभी कल की मुरली में ही था, साकार मुरली में, बहने बहनों के साथ इतना ज्यादा प्यार में आ जाती हैं कि बाबा को याद करना ही भूल जाती हैं। तो बहने बहनों की भी दोस्ती ऐसी हो जाती है, भाई भाइयों की दोस्ती भी। तो मोह भी बाबा किसको कहता है? कहते हैं मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है। तो मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है तो फिर किसको याद करना है? तो यहाँ पर सर्व संबंध का सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन सर्व संबंध का अनुभव बाबा से, कोई भी संबंध मिस ना हो। बाबा कहते हैं, अच्छा चलो, आपकी आपको किसी की विशेषता अच्छी लगती है या जो भी अच्छा लगता है, लेकिन बाबा को मत भूलो, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन? आज उसके अंदर वो जो गुण है, जो सेवा है, जो कलाएं हैं, वो किसने भरी है? बाबा ने भरी है ना। तो गुण उठाओ भले, कि हाँ इसके अंदर ये गुण है तो मेरे अंदर भी होना चाहिए, लेकिन प्रभावित नहीं हो जाओ, उनके लगाव झुकाव में नहीं आ जाओ, कि फिर वो आत्मा ही आपको याद आती है। कोई भी मुश्किल समय होगा तो कौन याद आएगा? लगाव झुकाव वाला, जो मेरे दिल की बात को समझ सकता है, जिसे मैं अपना समझती हूँ। फिर सोचते हैं, एक तो चाहिए ना जिससे हम कुछ अपने दिल की बात कर लें, चाहिए कि नहीं चाहिए? बाबा तो निराकार है, आकार है, और जब कोई मुश्किल आती है तो योग भी लगता नहीं, और लगता भी है मानो बाबा को सुनाया अभी तो पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, क्योंकि जवाब तो मिलता ही नहीं है, फिर क्या करें? हाँ क्या करें, मिलता है कि नहीं मिलता है? जिनको लगता है कि मुश्किल के समय भी हम बाबा को ही याद करते हैं और बाबा की मदद हमें तुरंत मिल जाती है, वो हाथ उठाओ। लो तो फिर ये तो प्रश्न ही नहीं है ना, मेजॉरिटी ने उठाया, कुछ कुछ ने नहीं भी उठाया, लेकिन इसका मतलब मिलती है, इनको मिलती है तो सबको मिल सकती है, भगवान तो सबका है ना, कोई एक का तो है नहीं। तो इसका मतलब बाबा हमें ये कहते हैं कि जब मैं भक्तों को भी अनुभव कराता हूँ, आप तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, आपको नहीं कराऊंगा। ऐसे मुझे एक किस्सा याद आता है, एक परमहंस योगानंद हुए हैं, अपने यहाँ तो भारत में बहुत संत हुए हैं ना, तो किसे आप लोगों ने भी सुना होगा उनका नाम, योगानंद परमहंस हुए, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उसमें उन्होंने अपना एक लिख, क्योंकि पूरा वृत्तांत है उनके जीवन का, तो जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो कॉलेज पढ़ते हुए अपने दोस्त के साथ छुट्टियां थी तो उन्होंने वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि वृंदावन उन्होंने देखा नहीं था, वो रहते थे कलकत्ता में, और यहाँ पर वृंदावन के पास मथुरा है, मथुरा में उनके बड़े भाई की पोस्टिंग थी, वो कोई ऑफिसर पोस्ट पर थे, तो उन्होंने समझा कि भाई के घर होते हुए फिर हम वृंदावन चले जाएंगे। तो वो गए अपने भाई के पास पहुंचे और सारा बताया अपना प्लान कि हम वृंदावन जाएंगे। तो वो भाई ने कहा कि वो नास्तिक थे और ये जो था ये बचपन से ही सन्यासी बनने जैसे संस्कार नहीं होते, है ना, पूरी तरह भगवान के ध्यान में ही अपना समय बिताना, पढ़ाई कर रहे थे लेकिन फिर भी सारा जो बुद्धि थी वो उसमें लगी रहती थी, भक्ति पूजा पाठ गुरु के पास जाना ये सब करना, तो उनको उसका वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था और उसको पाखंडी मतलब कहते थे वो, कि ये सब क्या है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। तो जब वही उनके साथ वो मतलब थे घर में तो यही चर्चा चल रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको वृंदावन जाना था। तो उन्होंने कहा कि मैं मानता नहीं, और अगर तुम्हारा भगवान है तो चलो हम एक टेस्ट करते हैं, और टेस्ट ये है कि मैं तुमको यहाँ से ट्रेन में बिठा दूंगा वृंदावन जाने के लिए, लेकिन कोई पैसा नहीं रहेगा तुम्हारे पास, माना वो जो भी पैसा लेकर आए हैं वो दे दें उसको भाई को, और बिना पैसे के आप जाओगे वृंदावन, फिर आपका भगवान ही आपको खिलाएगा, आपका भगवान ही आपको दिखाएगा और आपका भगवान ही आपको वापस लेकर आएगा। अगर ये होता है तो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को मानने लगूंगा, और अगर ये नहीं होता है तो तुम बिल्कुल गलत रास्ते पर हो और तुम भी अब सही रास्ते पर आ जाओ। तो उसने, क्योंकि उनको जो वो था योगानंद, बचपन में उनका नाम योगानंद नहीं था, क्या नाम था मुझे पता नहीं, तो वो जो है वो उन्होंने भगवान के अच्छे अनुभव किए थे, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से बचपन से ही भक्ति भाव था उनके अंदर, भगवान के प्रति बहुत लगन थी, तो उनको कोई कोई साक्षात्कार भी हुए थे देवी के, क्योंकि कलकत्ते में देवी की पूजा बहुत होती है, तो उनको पूरा निश्चय था कि अगर ये भाई चैलेंज कर रहा है और भगवान है, मुझे निश्चय है क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है, तो जरूर भगवान जो है वो ये टेस्ट मतलब जो ये कह रहे हैं वो हमारा पूरा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहते हैं ऐसे ही होगा, हम कुछ पैसा नहीं लेकर जाएंगे और हम ट्रेन में जाते हैं और फिर देखते हैं जो भी होगा। तो वो दोनों दोस्त बैठ गए ट्रेन में। अब उसका जो दोस्त था, जो इनका अनुभव था वो दोस्त का तो नहीं था, वो तो दोस्त तो साथ में आया था, तो वो उन पर नाराज होने लगा कि ये क्या किया तुमने, अभी हम वहाँ वृंदावन में जाके करेंगे क्या, और भूख लगेगी तो खाएंगे क्या, कुछ है नहीं हमारे हाथ में, और वापस कैसे आएंगे, है ना, टिकट का भी पैसा नहीं है, तुमने ऐसा माना क्यों, माना वो उसको थोड़ा सा कहने लगा। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज रखो, देखते हैं आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। तो वो तो अपनी रीति से जो वो भगवान को याद करता था वो कर रहा था और उतने में ही ट्रेन में कोई चढ़ा, जो स्टेशन आया उसमें कोई चढ़ा, और ये जो दोनों थे ये किशोर आयु के थे, दोनों जो बच्चे थे ये उस समय। तो वो उसने जो है उनको देखा तो उसने आगे से ही उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला हम वृंदावन जा रहे हैं, हमें वो तीर्थ करना है, वृंदावन तीर्थ है। तो कहा कि ऐसा है, हमारी जो वृंदावन में तो बहुत सारे आश्रम हैं, तो कोई आश्रम के थे वो, तो बोला हमारे आश्रम की जो मुखिया हैं उन्होंने यहाँ के राजकुमार को बुलाया था, लेकिन वो राजकुमार नहीं आ पाएंगे किसी कारण से, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो अब उन्होंने वो सब भोजन वगैरह बना लिया है उनके लिए, क्योंकि वो आने वाले थे लेकिन अचानक उनका कैंसिल हो गया। तो आप दोनों हैं, आप दोनों की कोई व्यवस्था है वहाँ वृंदावन में, उसने आगे से पूछा। तो उसने कहा नहीं, अभी तो हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। तो उसने कहा कि क्यों नहीं, आप दोनों मेरे साथ आ जाओ, वहाँ पर भोजन तो बना ही है तो आप वहीं भोजन कर लेना। तो वो जो योगानंद थे उन्होंने अपने दोस्त की तरफ देखा कि अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, भगवान ने हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया। तो वो गए वहां और इतना अच्छा भोजन, क्योंकि वो राजकुमार के लिए बना हुआ था, कि ऐसे ऐसे व्यंजन तो जिंदगी में कभी खाए ही नहीं, ऐसा भोजन हमने किया वहां पर। और भोजन करने के बाद फिर विदाई ली वहां से, तो कोई माता जी थी उस आश्रम को चलाने वाली, और वो बहुत खुश हुई कि ये दो ऐसी, क्योंकि वो तो वैसे भी भगवान के भक्त थे ना, तो उनका वो जो लुक था वो उसी प्रकार का था जैसे योगी होते हैं। तो वो बहुत खुश हुई उन बच्चों को देखकर, और फिर बाद में वो आ गए कि चलो अभी वृंदावन के और मंदिर देख करके फिर हम जाने का सोचेंगे। तो उस बीच में क्या हुआ कि कोई एक मंदिर में वो जो भक्त आते रहते हैं पूजा करने के लिए, तो एक भक्त बैठा होगा, उसे साक्षात्कार हुआ कि यहाँ पर कोई मेरे दो भक्त आए हुए हैं, उनको तुम्हें वृंदावन दिखाना है। और वृंदावन दिखा और ये भी बता दिया कि कहाँ खड़े हैं वो, है ना, वहाँ जाना है आपको और उनसे पूछ के और दिखा के फिर उनको भेजना है। तो वो मंदिर से बाहर निकला, बाहर निकला तो देखा सामने एक पेड़ के नीचे वो दो खड़े हैं। तो उसने उनसे जाके पूछा कि आपको वृंदावन घूमना है, तो बोला हाँ घूमना है, हम सोच रहे थे कैसे क्या करें, कैसे जाएं, कुछ पता नहीं है यहाँ पर, पहली बार आए थे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको वृंदावन घुमाऊंगा। तो बोला कि आप हमें घुमाएंगे, मतलब वही होता है ना भाई, आपके पास इतना समय है ये सारी बात, तो वृंदावन घूमने में तो टाइम लगता है। तो उसने कहा नहीं, ये भगवान का आदेश है मुझे और मैं आपको वृंदावन घुमाऊंगा। तो उसने उनको वृंदावन घुमाया, सारा खर्चा उसने ही किया, वो घुमा रहा था वृंदावन। अब वापस जाना था, रात हो गई, तो उसने पूछा आपके पास टिकट है वापस जाने की, मथुरा जाना था क्योंकि वो मथुरा से आए थे, तो मथुरा जाने की टिकट है, तो बोला नहीं है। तो उसने अपने पैसे निकाले और दो टिकट करा दी, मना टिकट लाके दे दिया, और उसके अलावा ट्रैवलिंग में अगर कुछ जरूरत पड़े तो उसका पैसा भी उनको पकड़ाया। तो उसने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, बस टिकट हो गया बहुत है। उसने कहा नहीं नहीं आप ही लेकर के जाओ, कुछ जरूरत पड़ सकती है, और जबरदस्ती पैसा दिया उनको और वो मथुरा आ गए। और उन्होंने सारी अपनी स्टोरी सुनाई अपने भाई को, तो भाई मान गया कि भगवान है। माना इतना वंडरफुल तरीके से भगवान ने उनके लिए जो भी था मतलब पूरा निभाया, क्योंकि अटूट निश्चय था उसका, वो जो उसका अनुभव था कि भगवान है, वो अटूट निश्चय के आधार पर गए। तो भगवान एक कदम हम उठाते हैं तो हजार कदम हमारे लिए हाजिर हैं। हम बाबा कहते हैं ना, आपका वो दिल से मेरा बाबा, और बाबा ना आए और बाबा आपके लिए ना करे ऐसा हो नहीं सकता, पर निश्चय चाहिए उतना। जरा भी संशय अगर आया तो फिर संशय में दूसरी मार्जिन आ जाती है। तो इसीलिए कभी भी किसी आत्मा की तरफ हमारी बुद्धि न जाए, सर्व संबंध हमारे बाबा से है, इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई। अगर जोड़ा तो क्या होगा, हिसाब किताब बनता है आत्माओं के साथ हमारा, और वो हिसाब किताब बनेगा तो कर्म बंधन, कर्म बंधन बनते ही हमारा योग कमजोर होने लगता है। बाबा से जो हमें अनुभूति होनी चाहिए, जो शांति, जो प्यार, जो शक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो फिर हम नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं शुरू शुरू में हमें आए थे ना, हमारा योग बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो योग लगता ही नहीं। कई बाबा के बच्चों की शिकायत हो जाती, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कर्म बंधन में कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। फिर क्रोध, क्रोध का क्या है? हम मोटे रूप से दुनिया वालों जैसे गुस्सा नहीं करते। अभी दुनिया वाले तो बात बात में चिल्लाएंगे, गाली भी दे देंगे और मारपीट पे भी आ जाएंगे, है ना। तो हम सहन करना सीख जाते हैं, चुप रहते हैं हम, ज़्यादा किसी को सवाल जवाब नहीं करते। और ये भी लोग महसूस करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में ये जाने लगे हैं तब से इनका गुस्सा कम हो गया है। और फिर हम सोचते भी हैं अगर कर दिया तो ये परिवार वाले ही सामने से कह देते हैं ओम शांति में जाते हो और गुस्सा करते हो, तो चुप तो रहते हैं लेकिन सूक्ष्म में गुस्सा, सूक्ष्म में माना अब मुझे ये जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, कोई भी हो, पति हो, जो भी हो, सास हो, नहीं सुन रहे हैं, है ना, और या गलती कर रहे हैं, जो भी हो रहा है माना, तो हम क्या करते हैं? आंखों से गुस्सा करते हैं, मुंह से नहीं करते, आंखों से दिखाते हैं कि मैं नाराज हूं, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या थोड़ा सूक्ष्म घृणा भाव आ जाएगा उनके लिए, है ना, ऐसे करते हैं या ऐसे चलते हैं, हाव भाव से गुस्सा करना ये शुरू हो जाता है। तो वो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन उनको पता चलेंगे नहीं चलेंगे? तुरंत पता चलते हैं, क्योंकि अगर हम खुश हैं, हम प्यार से बात करते हैं और हम नाराज हैं, है ना, दोनों ही, हम भी दूसरों का हमें पता लग जाता है तो हमारा क्यों नहीं पता लगेगा। तो बाबा कहता है कोई कैसा भी हो, मन में जरा भी नेगेटिविटी भी नहीं आनी चाहिए। हम नाराज कब होते हैं? जब नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, है ना, तो वो आत्मा परवश है। जो भी कोई भी आत्मा ऐसा कर रही है वो परवश है, तभी ऐसा कर रही है ना जो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है फिर भी रहम करना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, उनको शांति देना। हम मास्टर शांति दाता हैं, अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो ये तो यही हुआ ना कि हम भी उनके जैसे बन गए, तो फिर हम उनका परिवर्तन नहीं कर सकते। कई कहते हैं कितनी बार सहन करेंगे, एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, आखिर सहन करने की भी तो कोई लिमिट होती है। कितनी लिमिट होनी चाहिए? हाँ, अनलिमिटेड, हाँ, जो समझते हैं अनलिमिटेड चलेगा, हाँ, कितना भी सहन कर सकते हैं, वो हाथ उठाइए, दो चार ही है, नहीं होता है। तो बाबा हमें अनलिमिटेड ही देते हैं, जो कुछ भी है वो सब अनलिमिटेड ही होना चाहिए, बेहद ही, तो बेहद सहन। और हम किसकी आज्ञा से सहन कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा से। इसलिए बाबा कहता है कि सहन करने वाले ही सहनशाह बनते हैं। तो वो शुभ भावना की शक्ति हमारी इतनी श्रेष्ठ हो कि कोई कितना भी नेगेटिव है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम, कोई गाली भी दे रहा हो, बाबा कहते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, कोई हमसे दुश्मनी रखता है तो गाली ही देता है ना, हमें नीचा गिराने की, दिखाने की ही कोशिश करता है ना। ऐसी आत्मा के प्रति भी ग्लानि को गायन समझो, निंदा करने वाले को भी अपना मित्र समझो। तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। फिर मोह जीत हम वैसे बन जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे जो भी संबंधी हैं, कई बार तो वो विघ्न रूप भी बनते हैं हमारे लिए, सब तो ज्ञान में नहीं चलते ना, तो वैसे ही हमारा मोह टूट जाता है। तो मोह की जंजीरें तो टूट जाती हैं, लेकिन मोह की वो जो बाबा कहते हैं ना चेन, सोने की चेन की तरह वो रगें होती हैं मोह की, वो रगें नहीं जाती। खासकर माताओं को बाबा कहता है ना, मोह की रगें होती हैं, मेरा बेटा, मेरा पति, जहाँ मेरा मेरा है वहाँ उसकी निशानी क्या है, उसको कुछ होगा तो मेरे को भी होगा, वो थोड़ा भी दुखी है तो मैं भी दुखी, ये मुंह की निशानी है। फिर बाबा ने क्या बताया, कैसे मोह जीत बनना है, वैसे भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये हमारा अंतिम पेपर है, तो मेरा मेरा नहीं, कोई भी मेरा नहीं है, सब कौन है, तेरा, सब बाबा के हैं, बाबा ने मुझे इनकी सेवा में रखा है, मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरा पति है ही नहीं, बाबा के हैं और ये मेरा कर्तव्य है, हम ट्रस्टी हैं, बाबा ने हमें गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया, तभी हमारा कमल फूल समान जीवन होगा, यानी हम उन सब में रहते हुए भी न्यारे रह सकेंगे। तो जब तक हमें ये स्मृति नहीं है, वो स्थिति नहीं है, तब तक हम मोह जीत नहीं बन सकते। और फिर लोभ के लिए बाबा कहता है, लोभ दुनिया वालों जैसा लोभ नहीं रहता हमको, धन के पीछे हम नहीं भागते जैसे दुनिया भाग रही है, भाग दौड़ की जिंदगी है, जितना कमा लो, ज्यादा से ज्यादा कमा लो, फिर चाहे गलत काम करके कमाना पड़े तो भी कमा लो, यही है ना दुनिया में, तो हमारा वैसा लोभ नहीं है, हमको अविनाशी कमाई का महत्व समझ में आ जाता है कि ये सारा धन नहीं जाने वाला, क्या जाने वाला है, क्या जाने वाला है, ये जो हमारी अविनाशी कमाई है, जो पुरुषार्थ है हमारा, ज्ञान योग, ये हमारे साथ जाएगा। तो हम समय देते हैं पुरुषार्थ के लिए, और बहुत भाई बहने तो ऐसे हैं कि जब इनको ये महत्व समझ में आ जाता है तो फिर अगर उनके पास पर्याप्त है, ज्यादा उनको कमाई करने की जरूरत नहीं है, तो वो सब छोड़ करके किस में लग जाते हैं, बाबा की सेवा में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपना बिजनेस छोड़कर बाबा पूरी तरह से बाबा की सेवा में लग गए। तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं, सब सभी तो बाबा ऐसे कहता भी नहीं है, हमको जीवन निर्वाह तो करना ही है, लेकिन ऐसे जिनके पास इतना है, ऑलरेडी इतना है, और बाबा कभी मना भी नहीं करता कि आप धन साधन यूज नहीं करो, भले यूज करो लेकिन कैसे, अनासक्त वृत्ति से, यानी वो साधन आपको साधना की स्थिति से नीचे ना ले आए, क्योंकि लोभ क्या होता है ब्राह्मण जीवन में, कौन सा लोभ ज्यादा आता है, रहन सहन खान पान, ऐसा तो रहन सहन चाहिए, ऐसा मकान तो होना ही चाहिए, ये गाड़ी तो होनी चाहिए, ये साधन तो होने ही चाहिए, तो हमारी आवश्यकता है मानो, फिर कई उन इच्छाओं के पीछे चले जाते हैं, हद की इच्छाएं जिसको बाबा कहता है, और फिर योग बाबा से पूरी तरह टूट जाता है, किसके पीछे बुद्धि लगी हुई है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, या खान पान में बुद्धि होती है कईयों की, है ना, खाने में ये ऐसा तो होना ही चाहिए, अगर चावल नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलता है, अगर रोटी नहीं मिलेगी तो मेरा, कईयों को होता है ये तो चाहिए ही चाहिए, चाय के बिना तो चलेगा नहीं, या चाय कॉफी जो भी है, बाबा कहता है ये प्रकृति के पेपर है, क्योंकि खाना तो प्रकृति से आता है ना, तो ये प्रकृति भी पेपर लेगी, अगर हमारे कोई भी कमजोरी है वो ही नहीं मिलेगा, और उसमें पास होंगे तभी पास विद ऑनर होंगे, है ना, अंत समय में वही पेपर बन के आने वाला है जो हमारी कमजोरी है, इसलिए अभी से ही जो मिले जैसा मिले, 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और सूखी रोटी और दाल मिले या गुड़ मिले तो भी अच्छा, उसमें भी उतना ही आनंद लगे जितना कि 36 प्रकार के भोजन में। तो ये बाबा कहता है साधन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो भी संतुष्ट है, हो सकता है, तब हम कहेंगे कि हम उन प्रकृति के पदार्थों से भी, यानी प्रकृति जीत बने हम, उसमें जरा भी हमारी वृत्ति नहीं होनी चाहिए, जहां जैसा जिस स्थिति में बाबा रखे, जैसे बाबा ने रखा ओम मंडली में बच्चों को, हर हाल में रखा, जो हर हाल में पास हो गए वो आज विश्व के राज्य अधिकारी बन गए, ऐसा ही कहेंगे ना हमारी जितनी भी दादियां जो भी भाई थे उस समय, और अहंकार में दुनिया वालों जैसा देह भान हमारा नहीं रहता, है ना, पद का अभिमान रखना या धन संपत्ति का अभिमान यही होता है ना, अलग अलग पदों पर काम करते हैं तो उसका भी एक मैंपन होता है। लेकिन कौन सा अभिमान शुरू हो जाता है? सूक्ष्म जो अभिमान है, अपना ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने गुणों का, विशेषताओं का अभिमान, सेवा का अभिमान, इस तरह के अभिमान, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, या जो भी हमारी विशेषता है। तो बाबा कहते हैं किसने दी ये विशेषता देने वाला कौन? ज्ञान किसने दिया? ज्ञान मेरा है क्या? चलो ठीक है, किसी किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, मेमोरी अच्छी होती है, वो ज्ञान के पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से सुना सकते हैं, या जो भी है ना, अच्छा भाषण कर लेते हैं। तो पद दिया किसने? ज्ञान आया किससे? बाबा का दिया हुआ है ना, तो इसीलिए बाबा ने दिया है। बाबा करण करावनहार है, मैं निमित्त हूं। और फिर सूक्ष्म अभिमान आता है कि कौन सा आता है? मैं राइट हूं। ज्ञान का ये भी अभिमान है कि मैं राइट हूं, मैंने जो कहा वो ही माना जाना चाहिए। फिर दूसरे की बात कितनी भी सही हो, हमको माननी ही नहीं। तो बाबा हमेशा कहते हैं वो अपने नजरिए से राइट हो सकते हैं ना, हर एक का सोच अलग अलग है, वो अपने ढंग से सोच रहे हैं, वो राइट है अपनी जगह और हम राइट हैं अपनी जगह। तो किसी को भी हमें कट नहीं करना, उनके विचारों को भी हमें सम्मान देना है, चाहे भले हम मानते नहीं हैं उनकी बात, लेकिन उसको हम बहस में भी नहीं उलझते। नहीं तो फिर क्या होता है, सिद्ध करने लग जाते हैं, बहस में आ जाते हैं, फिर क्रोध भी करने लगते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए। तो ये अहम की निशानी है। फिर जो सूक्ष्म अभिमान वाला होता है वो अपनी गलती नहीं मानता है, क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो मानो हमसे कोई गलती हो गई, हो भी जाती है, ऐसे तो है नहीं कि गलती होगी नहीं, जीवन है। तो गलती हो गई, सॉरी बोला, बात खत्म। लेकिन अगर हमने गलती मान ली तो मेरे को कम समझा जाएगा, मेरा मान कहीं कम ना हो जाए, तो फिर अपने को छुपाने की, अब गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं, छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, फिर किसी दूसरे के ऊपर लगाना पड़े तो उसके ऊपर भी लगा देते हैं, ऐसे हुआ ना, इसने ऐसा किया ना, इसलिए ऐसा हुआ, और ये सब क्या है। तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, आपने आत्माओं के सामने तो अपना मान बचा लिया, मान भी जाते हैं लोग, सोचते हैं ठीक है ये कह रहे हैं तो नहीं किया होगा, नहीं होगा, लेकिन क्या भगवान से छुपा रहता है? बाबा से छुपा है क्या? नहीं छुपा है ना। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो भगवान के दिल से हम नीचे आ जाते हैं, और वो जो हमारी अविनाशी कमाई होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इसीलिए ये भी सूक्ष्म, अगर ये हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ऐसी कोई सूक्ष्म कमियां अभी हमारे अंदर हैं, तो उनको भी हमें जीतना है। और ऐसे ही वो किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। सूक्ष्म है मैं माना, कोई आपके सामने दूसरे की तारीफ करेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, और फिर अगर आपको पता होगा तो आप उसकी एक दो कमी भी सुना दोगे, आपको पता नहीं है वो ऐसे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सामने किसी की प्रशंसा हो। अब ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होते, गुण भी होते हैं, कमियां भी होती हैं, दोनों ही चीज होती हैं। अब जो सुना रहा है उसकी तारीफ, उसने उसके गुण देखे और हम उसकी कमी ज्यादा देखते हैं, इसलिए हमने क्या सुना दिया। और फिर सूक्ष्म अभिमान है तो रौब में आ जाते हैं, थोड़ा तो रौब रखना ही पड़ता है, फिर ये भाइयों का पलड़ा भारी होता है इसमें, थोड़ा तो रौब होना ही चाहिए, बिना रौब के तो कोई कोई सुनता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं रौब नहीं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रूहाप, यानी रूहानी नशा। रूहानी नशा माना स्वमान में रहो, जहां स्वमान है वहां अभिमान आ ही नहीं सकता, और अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी, एक सेकंड में वो अभिमान में आ जाएगा, माना फीलिंग में आ जाएगा, छोटी बात भी नहीं सुन सकते किसी की। तो अगर मुझे कोई भी बात को लेकर के बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आती है तो इसका मतलब अभी भी वो सूक्ष्म अहम हमारे अंदर है। तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने आप को सेवाधारी समझा, बाबा ने कहा मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, कभी कहा इतनी बड़ी अथॉरिटी भगवान का रथ, लेकिन बाबा ने बच्चों के साथ हर काम किए, छोटे छोटे काम भी किए, बड़े तो करते ही थे लेकिन छोटे काम भी बाबा ने बच्चों के साथ किए और बच्चों की सेवा में सदा हाजिर थे। तो जैसे बाबा निमित्त निर्माण रहे सदा और निर्माण किया, ऐसे ही हमें भी निरहंकारी, इसलिए दो बार अंडरलाइन कराया, निर्विकारी में तो आता ही है लेकिन निरहंकारी बाबा ने अलग से भी कहा, क्योंकि बाबा कहते हैं ये जो मैंपन की पूंछ है ये लास्ट तक नहीं जाती है, और इसीलिए दिखाते हैं शास्त्रों में जब हनुमान ने पूंछ को आग लगाई तब लंका जली। तो कौन सी पूंछ को आग लगी, वो तो यादगार किसके हैं, यहाँ के ही है ना, कोई ऐसा थोड़ी हनुमान ने कोई लंका को आग लगाई, लेकिन कौन सी पूंछ, ये जो मैंपन की पूंछ जब भस्म होती है तब जाकर ये रावण की लंका, माना ये कलयुग विनाश होता है और ये सतयुग की सृष्टि आती है। तो बाबा के समान ही हम, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ करके स्वयं को निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनाया, हमें भी ये पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए हम अपना चार्ट रखें कि कहाँ तक हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं। ओम शांति।
फलक से हम